संसर्ग मानव होने के नाते साधक की और साधक होने से जीवन की सफलता पर विचार करने बैठी हूँ। तो अपने संबंध में एक विशेष बात जो ध्यान में रखने के लिए है वो ये है कि भौतिक तत्वों से रचे हुए शरीरों के अतिरिक्त अलौकिक तत्व से रचे हुए मैं पंता भास भी व्यक्तित्व में है। शरीर जो दिखाई देता है इस आकृति को देखकर स्थूल दृष्टि से इसी को बहुत अधिक महत्व दे देना अपनी भूल है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व ले लीजिए, मनुष्य के व्यक्तित्व में तीनों शरीर भी हैं और शरीरों के अतिरिक्त और शरीरी तत्व भी है जिसको मैं कहकर हम लोग संबोधित करते हैं। सब मिलाकर संपूर्ण एक व्यक्तित्व बनता है, उसमें से केवल शरीरों को महत्व देना ठीक प्रकार से उसका निर्वाह हो जाए ऐसा सोचना और संसार के संपर्क से अधिक सुख मिल जाए ऐसा सोचना ये अधूरी बात होती है, ये पूरी बात नहीं होती है। अब आप सोच कर देखिए कि जन्म से लेकर अब तक जो समय बिताया हमने इस संसार में तो केवल शरीर और जगत के अभियोजन में ही बिताया। ठीक तरह से रहना हो जाए, सुख पूर्वक रहना हो जाए, सम्मान पूर्वक रहना हो जाए, इसी पर पूरा ध्यान दिया गया, इसी में सारी शक्ति लगाई गई। और अब कैसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सब करते करते भी अब अपने को निर्बलता पराधीनता नीरसता बता रही है। तो ऐसी दशा इसलिए हो गई कि हमने भूल दी, संपूर्ण व्यक्तित्व को सामने नहीं रखा, अपने को सामने नहीं रखा। इस मैंपन का भास जो होता है अपने को, ये सबसे पहली ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया है। मनुष्य जन्म लेता है, शरीरधारी होकर जगत में आता है, तो ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक ये सारे पहलू उसके साथ होते हैं। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो होती है मनुष्य के जीवन में जन्म के बाद कॉग्निटिव एस्पेक्ट से कहते हैं ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया जो होती है मैंपन का भास, मैं हूँ यह पहले मालूम होता है। उसके बाद उसको अपने से भिन्न एक जगत दिखाई देता है और धीरे धीरे दूसरी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ बहुत देर में काम करना शुरू करती है। सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है मैंपन का भास। तो यहाँ तक तो वैज्ञानिक स्तर के लोग अध्ययन के द्वारा जानते हैं। अब दार्शनिक दृष्टिकोण अपने सामने रखिए तो इससे आपको पता चलेगा कि शरीरों का बन जाना बदल जाना बिगड़ जाना यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और उसके द्वारा ये सब बातें क्रमिक ढंग से स्वतः ही होती रहती हैं। लेकिन मैंपन का भास जो हम लोगों को जन्म के समय रहता है वो शरीरों के नाश के समय भी रहता है और शरीरों के नाश होने के बाद भी रहता है और बहुत से लोगों को फिर नए शरीर धारण करने के बाद इसकी याद भी रहती है। कुछ लोगों को कुछ ऐसा होगा प्राकृतिक विधान। तो आज एक सत्य जीवन का हम सब लोग अपने सामने रखें और उसका आदर करें तो साधना के पथ में बड़ी सहायता मिलेगी। वो क्या है कि शरीर बना है भौतिक तत्वों से जिसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और मैंपन बना है अलौकिक तत्व से जिसका की नाश नहीं होता, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो अथवा न हो, लेकिन यह सत्य है। इसलिए इसे सत्य को स्वीकार करके हम लोग साधु में अधिक तत्पर हो सकते हैं। मैंपन का नाश नहीं होता, वो रहता है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अनुभवी संत ने हम लोगों को यह सुझाव दिया कि देखो, धरती में आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण शक्ति से सब भौतिक तत्व धरती की ओर आकर्षित रहते हैं। इतनी सी बात जनरल नॉलेज की तो आप लोगों को सब किसी को मालूम ही होगा। जैसे वृक्ष में फल पक गया, डंठल की पकड़ उसकी झीली हुई तो धरती के आकर्षण शक्ति से खींच करके वो जमीन पर आ गिरा। देखा है? देखा है। और गोलाकार पृथ्वी, अब चलती हुई पृथ्वी गतिशील, और उस पर हम सब लोग चलते फिरते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। वो हमारे शरीर का संतुलन जो संभाल करके रखा जाता है इस धरती पर, वो धरती के आकर्षण शक्ति से संभाला जाता है। कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो महाराज जी ने एक बार ऐसे बताया कि देखो, जैसे भौतिक तत्व के आकर्षण से धरती की ओर सब छिपे रहते हैं, तो संसार की जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से पृथ्वी की ओर खींचकर उसके साथ रहते हैं। वस्तुओं को खींचती है धरती। उसी प्रकार से ये नयेपन जो है, इसका उद्गम जो सर्व उत्पत्ति का आधार है, सर्व प्रतीति का प्रकाशक है, वो इस मैपन को अपनी ओर खींचता है। तो दोनों अपनी अपनी सजातीयता में खींच गए। भौतिक तत्वों का खिंचाव धरती की ओर हो गया और मैपन का खिंचाव उस अनंत तत्व की ओर हो गया। ये बात पकड़ में आती है? मैं बना है उस अलौकिक अभौतिक तत्व से, इसलिए इस मैं का आकर्षण हमेशा उसकी ओर होता है। और वो है बड़ा जोरदार, बहुत जोरदार है। स्वभाव से आप देखेंगे कि हम लोग अगर जगत की ओर आकर्षित होते भी हैं तो केवल शरीरों के संबंध से, और कोई दूसरा मतलब होता नहीं है, और कोई दूसरा मतलब सिद्ध भी नहीं होता है। अब शरीरों को लेकर संसार की ओर आकर्षित होने की घड़ी में भी परमात्मा की याद आती रहती है, उनकी जरूरत महसूस करते रहते हैं, उनकी ओर सहज स्वाभाविक खिंचाव अपना होता रहता है। तो आपने देखा होगा कि मनुष्य के व्यक्तित्व में दोनों ही बातें एक साथ होती है, शारीरिक और मानसिक सुखों को लेकर जगत की ओर भी आकर्षित हम होते हैं और अपनी शांति स्वाधीनता और प्रियता को लेकर परमात्मा की ओर भी आकर्षित रहते हैं। ठीक है कि नहीं? नहीं? आपको अपने जीवन में ऐसा लगता है? नहीं लगता है? नहीं? लगता है। ये किसी जाति की बात नहीं है, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी मजहब की बात नहीं है, पढ़े लिखे पढ़े लिखे होने की बात नहीं है, यह मानव मात्र साधक मात्र की अपनी बात है कि शरीरों की जरूरत सामने आती है तो हम लोग जगत की ओर खिंच जाते हैं। भूख लगी है तो भोजन से पास चलो, प्यास लगी है तो जल से संबंध जोड़ो। किसी प्रकार की मानसिक खुराक चाहिए सुख दुख बांटने के लिए, तो कहीं खुशी हो रही है तो समाज के साथ जुट जाओ, कहीं दुख घबराहट है तो समाज के साथ जुट जाओ। जो मन की खुराक है व्यक्ति की, तो तन और मन की जरूरत को सामने रखकर हम संसार की ओर आकर्षित होते हैं और अपनी जरूरत जो शांति स्वाधीनता और परम प्रेम है उस आवश्यकता से प्रेरित होकर हम अभौतिक तत्व की ओर आकर्षित होते हैं, अलौकिक तत्व की ओर आकर्षित होते हैं, अनादि अनंत अविनाशी सत्य की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत ही स्वाभाविक बात है। अब इस दुविधा में पड़े हुए बहुत दिन बीत गए हम लोगों के, अनेकों जन्म बीते होंगे, तो जाने दो जन्म की बात छोड़ दीजिए, इसी जन्म के अनेकों वर्ष हमने इस दुविधा में बिताए। किस दुविधा में? कि एक ही जीवनी शक्ति उसी को कभी कभी शरीरों के साथ जुटाकर संसार के सुख भोग में झोंक दिया और उसी को लेकर कभी कभी शांति संपादन के द्वारा योग सिद्धि में स्वाधीनता प्राप्ति में परमात्मा की भक्ति में लगा दिया। एक ही जीवनी शक्ति है, एक ही लाइफ फोर्स है, उसको डायनामिक फोर्स भी कहते हैं, जो कि व्यक्ति को गतिशील बनाता है। तो वो एक ही है, पूंजी एक ही है और प्रकृति के विधान से सृष्टिकर्ता के विधान से नाप तौल करके हम लोगों को सब किसी को मिली हुई है। अब उसी शक्ति को लेकर जब शरीरों के माध्यम से संसार का सुख भोग पसंद करो तो ये शक्ति वायु जगत की ओर प्रवाहित हो जाती है और अपनी आवश्यकता को लेकर के योगवित होना पसंद करो तो ये शक्ति बाहर की ओर से खींच करके अपने भीतर केंद्रीभूत होकर उद्गम से जुट जाती है। दोनों ही बातें स्वभाव से होने वाली हैं। अंतर क्या है? तो अंतर इतना है कि बनने बिगड़ने वाले शरीरों पर ज्यादा ध्यान देंगे, अधिक समय बिताएंगे, उसकी प्रवृत्तियों के लिए अधिक शक्तियों को खर्च करेंगे, तब क्या होगा कि शक्ति खत्म हो जाएगी और वासना शेष रह जाएगी, ये एक क्षति हो जाएगी। बल खत्म हो जाएगा और सुख भोगने की इच्छा रह जाएगी, ये एक घाटा लग जाएगा, ये जिंदगी की हार हो जाएगी, बहुत बहुत दुख की बात हो जाएगी। इसके विपरीत जब मालूम हो गया कि शरीर तो नाशवान है ही, इसका तो नाश होगा ही, इसलिए ये जब तक काम के लायक है तब तक साधन सामग्री के रूप में किसी से काम ले लो। अगर ऐसा निश्चय किया आपने तो बहुत आराम मिलेगा। यह केवल दृष्टिकोण परिवर्तन की बात है, आप केवल इतनी सी बात को अपने द्वारा स्वीकार करने में बहुत सहायता मिलेगी। केवल दृष्टि परिवर्तन की बात है। अब तक मैंने क्या सोचा था कि शरीरों की सहायता से जितना सुख मिल सके संसार का उतना ले लो, उसके परिणाम में दुख भोग मिला, असमर्थता मिली, अभाव मिला और मृत्यु मिली। ये अपनी जानी हुई बात हो गई। जीवन के सत्य पर विचार करने से ऐसा लगा कि ये मिटने वाले शरीर के अलावे मेरा अपना अस्तित्व भी तो है। इस मैं की आवश्यकता क्या क्या है? तो इसमें तो योग बोध और प्रेम की आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति अगर हो गई तो जन्म मरण का झंझट सदा के लिए मिट गया। योग बोध प्रेम की बात अगर पूरी हो गई तो संयोग वियोग की बात सदा के लिए खत्म हो गई। मान अपमान सम्मान की बात सदा के लिए खत्म हो गई। तो इस मैंपन की जो असली जरूरत है उसको जो लोग दृष्टि में रखते हैं उनके लिए सेवा त्याग प्रेम की साधना कठिन नहीं पड़ती है। साधना तो हम सब भाई बहनों ने बहुत पहले ही आरंभ कर लिया होगा, परंतु अब तक उसमें अगर सफलता नहीं मिली तो इतनी सी बात और सोच लीजिए, क्यों नहीं मिली? साधन सजीव नहीं हुआ, साधन और जीवन में एकता नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसको सोच लीजिए। तो सोचने से ऐसा ही लगता है कि नाशवान को हमने अधिक महत्व दिया, उसको संभालने में अधिक समय और अधिक शक्ति लगाई, और जो अपना जीवन है, जो अपनी आवश्यकता है, जो कभी न मिटने वाली शांति स्वाधीनता और प्रियता है, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए काम बना नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? अब बहुत पढ़ने से ये बात नहीं बनेगी, बहुत बोलने से ये बात नहीं बनेगी, बहुत सुनने से ये काम नहीं बनेगा। अभी इसी जगह बैठे ही बैठे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल डालिए। कैसे बदल डाले? कि अब तक हम नाशवान पर विशेष ध्यान दे रहे थे, उसी को संभाल रहे थे, अब हम अविनाशी जीवन को अधिक महत्व देंगे, सर्वाधिक महत्व देंगे, ऐसा मान लें उसी को महत्व देंगे। तो जो नाशवान पोषण है इस व्यक्तित्व का, वो सब भी उस अविनाशी जीवन की अभिव्यक्ति का साधन सामग्री के रूप में बन जाएगा, सहज हो जाएगा। ये दृष्टिकोण बदलना साधक का बहुत बड़ा पुरुषार्थ मैं मानती हूँ, और अब तक लोगों ने यही किया है। और क्या किया है? आपने महात्मा शाहनशाह जी का नाम सुना होगा और उनके जीवन की दो चार घटनाओं को मैं सुनाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। कश्मीर दरबार में जब उनको नौकरी नहीं मिली और संसार की ओर से निराशा मिली, तो युवावस्था है, असाधारण बुद्धि का स्तर है, और उस समय के लिए ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात थी, तो ऊंची शिक्षा भी थी अपने पास और काम करने की इच्छा भी थी, धन कमाने के लिए गए थे, घर में विधवा माता उनको सुख आराम देने की इच्छा भी थी। इन सारी बातों को लेकर के कश्मीर दरबार में गए और वहाँ उनको निराशा मिली। प्रधानमंत्री पिंडी दास जी से भेंट करना चाहते थे, तो एक दिन समाचार मिला कि आज फुर्सत नहीं है, नहीं मिलूंगा, और दूसरे दिन समाचार मिला कि आज बीमार हूँ, नहीं मिलूंगा, तो कुछ भी हो नहीं मिलूंगा, ये उत्तर उनको मिला। तो केवल इतनी सी बात से इस महापुरुष में इतनी जागृति आ गई कि कश्मीर दरबार से उठ करके वे घर गए ही नहीं। सोच लिया क्या सोच लिया कि अच्छा इसका नाम संसार है, मैं मिलने के लिए हाजिर हूँ, मिलने के लिए निवेदन करूँ और संसार इनकार करे, अच्छी बात है, ठीक है। तो उससे मिलकर क्या होगा जो मिलने को इनकार करता है? एकदम से दृष्टिकोण बदल गया। अरे कश्मीर दरबार में नौकरी नहीं मिली तो दूसरी जगह मिल सकती थी कि नहीं? तो और दो चार जगह ठोकरें खा सकते थे कि नहीं? लेकिन वो जागृत पुरुष थे, एक सचेत मानव थे, एक ही उदाहरण से सीख लिया उन्होंने, तो ठान लिया। क्या ठान लिया? अब तो मैं उसी से मिलूंगा जो मिलने को इनकार नहीं करता, और अब तो मैं उसी की सर्विस में रहूंगा जो बीमार नहीं पड़ता। दुनिया में ऐसा कोई मिलेगा क्या? तो काम ही खत्म हो गया। एक ही उदाहरण से संसार को इनकार कर दिया उस महापुरुष ने, तो उनका काम बन गया। तो केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन ही तो था। अब मैं सत्य के ही संग में रहूंगा, उसी के होकर रहना पसंद करूंगा, उसी से मिलूंगा, उसी की सर्विस में रहूंगा, इस निश्चय को करने के लिए इस बात की पुनरावृत्ति करनी पड़ी, माला जपना पड़ा। ये तो कुछ नहीं, बैठे हैं कश्मीर दरबार में, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कब प्रधानमंत्री पिंडीदास जी निकले तो उनसे मेरी बातचीत हो, और मंत्री जी नहीं निकले, निराशा का उत्तर मिला। तो उत्तर लेते ही समय उसी स्थल पर खड़े ही खड़े उस व्यक्ति का जीवन बदल गया कि नहीं? इसी को सत्संग कहते हैं। जीवन की घटनाओं के प्रकाश में असत के महत्व को इनकार कर देना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। सत्य के महत्व को स्वीकार कर लेना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। तो चमड़े का रंग काले से सफेद हो जाएगा कि नहीं, तो इसमें तो कोई भी हाँ नहीं भर सकता। प्रकृति की बहुत सी बातें हैं कि जिनमें हम लोग परिवर्तन नहीं ला सकते, उसके विधान से जो परिवर्तन होता है तो होता है, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन वही मनुष्य अपने ज्ञान का, अपने विवेक का अनादर करके अपनी मिट्टी पलीद करता रहता है, और वही मनुष्य अपनी जागृति से अपनी चेतना का आदर करके अनमोल जीवन को पाता है। तो मनुष्य ही तो ऐसा कर सकता है। और जो शरीर के संबंध से संसार की ओर आकर्षित था, वही तो उधर से अपने को हटा करके सत्य की ओर आकर्षित हो गया। इसमें कितना समय लगा? समय की बात तो नहीं है। इसमें कितना परिश्रम लगा? परिश्रम की बात भी नहीं है। सत्य का आदर करने में, निज विवेक के प्रकाश का आदर करने में समय और शक्ति खर्च करने की बात नहीं है। बहुत धीरज से, बहुत गंभीरता से इस विषय पर विचार करिए। बड़ी भूल होती है अपने से, और मैंने अपने को इस प्रकार की भूल में अनेकों बार पाया है और सावधान किया है। जब दोनों ही बातें सामने आ जाती हैं, कि भाई ये तो व्यवहारिक क्षेत्र है और इतना इतना काम तो इसमें होना ही चाहिए और ये होगा वो होगा, तो एक उसकी इंजन में फंसना और एक केवल अपने कर्तव्य की दृष्टि से केवल राग निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति में हाथ डालना और निवृत्ति की सामर्थ्य प्राप्त करना, फिर प्रवृत्ति से निवृत्त होकर निज स्वरूप में रहना, निज प्रभु की मधुर स्मृति में खोना, दोनों ही बातें सामने आती हैं। आप भाई बहनों के सामने भी आती हैं, आप भी उनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अंतर केवल इतना है कि किसी अगर निज विवेक का आदर किया गया तो भाई अलौकिक जीवन अविनाशी जीवन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना, तो ये बाहरी बातें जो हैं तो महत्वहीन हो गई। कितनी निश्चिंतता आ जाती है। अभी एक महिला मुझे मिली थी तो वे बता रही थी, एक साधक की चर्चा सुना रही थी कि बड़ा ही सुख का साम्राज्य उनके सामने था और सत्संग में जाने पर उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। ध्यान देकर सुना होगा और जैसे मैं निवेदन करती हूँ कि बैठे ही बैठे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, तो ऐसा उनका बदल गया। फिर पहले की तैयारी अधिक रही होगी, वहीं बैठे बैठे उनके भीतर खूब शांति छा गई, तो कुछ घंटे तो वहाँ बैठने में ही निकल गए। और जब उसके बाद आंखें खुली तो उन्होंने कहा कि कहा अपने भीतर इतना आनंद, अपने भीतर इतनी शांति, अब ये सुख का साम्राज्य लेकर क्या करूं मैं। तो सबको इनकार कर दिया, नहीं 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 ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरा जीवन तो मेरे भीतर ही है, मेरी शांति तो मेरे अंतर में ही है और वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतना आराम है उसमें, इसके आगे ये बाहर का सुख क्या है, कुछ नहीं है, कह करके उनका इनकार कर दिया और अपनी साधना में अधिक अधिक गहराई में उतरते चले गए। उनका काम बन गया। ये दूसरी बात हो गई। पहली बात हो गई कि आपका नाश नहीं होगा, आप मरेंगे कभी नहीं, मैं तन का नाश नहीं होता है, इसलिए मृत्यु के भय की कोई बात ही नहीं है। फिर मिले हुए शरीर का क्या तात्पर्य है, तो इसको साधन सामग्री हम लोग बना लेंगे और संयम नियम के साथ आरोग्यता पर ध्यान रखकर शरीर के लिए हितकारी पदार्थों को अर्पण करेंगे, इसे खुराक में, वस्त्र में, रहन सहन में, जागने सोने में, सब बातों में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना शरीर की सेवा है और साधकों के लिए अनिवार्य है, तो इस पर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसकी आरोग्यता को लेकर, इसके बल को लेकर क्या करेंगे, तो पहले जो इसके संयोग से सुख भोगने में राग उत्पन्न कराया था उसके नाश के लिए सेवा करेंगे। इतने की बात शरीरों के संबंध में ध्यान देने की है। संयम पूर्वक रहो, सदाचार पूर्वक रहो, इसकी सेवा के लिए हितकारी आहार विहार शयन ये सब रखो। और बल जो इसमें मिलेगा उसका क्या करेंगे, तो इसमें जो बल है उसके द्वारा दुखी जनों की सेवा करेंगे। इससे क्या फल मिलेगा, शरीरों के साथ सुख भोगने की वासना खत्म हो जाएगी, तो नया राग बनेगा नहीं, पुराना राग मिट जाएगा। और जब आप राग रहित हो जाएंगे, जब शरीर की आवश्यकता आपकी खत्म हो जाएगी, तो मृत्यु आपका स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे जैसे दुनिया की बहुत सी चीजें बन रही हैं, बदल रही हैं, मिट रही हैं, इसी तरह से समय पा करके इस शरीर का भी नाश हो जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव से आपको न भय होगा, न चिंता होगी, न दुख होगा। ये लौकिक पहलू का उपयोग हो गया। संपूर्ण व्यक्तित्व पर हम लोग विचार करते हैं। अब अपनी बात देखो, राग रहित हो जाओ तो सब काम बन गया। क्या क्या हो गया? तो जब अपने में राग नहीं रह जाता है तो शरीर और संसार से लगाव छूट जाता है। बहुत ही वैज्ञानिक आधार मुझे मिला इस सत्य को समझने के लिए, और संत के पास बैठकर प्रमाण भी मिला कि सचमुच ऐसा होता है। कैसा? कि जिस साधक का मैं आपकी चर्चा करती हूँ, आपकी चर्चा से मतलब कि जो इस प्रकार के द्वंद के बीच में चल रहा है कि थोड़ा खिंचाव संसार की ओर और थोड़ा खिंचाव परमात्मा की ओर, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी बात मैं करती हूँ। उनके साथ क्या होता है कि जब अपने लिए वे शरीर की आवश्यकता नहीं मानते हैं, जगत की सेवा में लगाएंगे और सेवा के फल से अपने को राग रहित होने का बल मिलेगा, अपने में राग रहित होने की सामर्थ्य आएगी। तो ये भी अपने उत्थान के लिए हो गया। तो जैसे जैसे संसार की शरीर की आवश्यकता खत्म होती है, वैसे ही जैसे अपने में से राग मिट जाता है, वैसे ही शरीर से अतीत का जो अपना अस्तित्व है उसका अनुभव होने लगता है। अब ईंट पत्थर के बनाई हुई कुटिया के भीतर बैठते होगा, कि घास फूस से बनी हुई झोपड़ी के भीतर बैठकर होगा, कि पहाड़ की गुफा में बैठकर होगा, कि खुले आसमान के नीचे बैठकर होगा, कि गंगा जी के तट पर बैठकर होगा, कि मरुभूमि में बैठकर होगा, कोई भेद नहीं है। शरीर चाहे जहाँ रहे और बैठे रहे, अगर उसका राग अपने में से निकल गया तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर तो रहेगा ही। उसको जहाँ रहना है वो रहेगा, और वहीं बैठे बैठे बैठ करके रखो, पांव पसार करके रखो, पीठ में टेक लगा करके, उसकी ओर से जितनी निश्चिंतता आपको मिल सके उसको सहज भाव से रहने दो। यदि आपके भीतर उसकी आवश्यकता नहीं रही तो उससे परे जो आपका अपना जीवन है उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है, लगाव छूट जाता है, तादात्म छूट जाता है, योग भोग प्रेम की अभिव्यक्ति से जीवन पूर्ण होता है। अब इसका प्रयोग करना पड़ेगा अपने को। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और कहने के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत दिनों तक हम लोग कहते रहे खत्म नहीं होगा। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतना कहना जरूरी नहीं है। सुनने और पढ़ने के लिए भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन उतना पढ़ना सुनना जरूरी नहीं है। एक बार जीवन के सत्य पर विचार करने के बाद अगर उसका प्रयोग आरंभ कर दो तो बहुत जल्दी अपने अनुभव में आ जाती है बात। प्रयोग को मैं बहुत आवश्यक मानती हूँ, प्रयोग करना चाहिए। इसलिए विविध प्रकार के साधकों की सेवा में उनके कल्याणार्थ स्वामी जी महाराज ने योग प्रसंग को रखा।
भाई सब कुछ करने के बाद कुछ न करने वाली साधना आपके जीवन में रहनी चाहिए। कुछ न करना यह बात विचार पंथ के साधकों के काम आती है और यह विश्वास पंथ के साधकों के काम भी आती है सोने से, क्योंकि अहम शून्य होने की बात है। तो जब तक कुछ न कुछ करते रहने की आवश्यकता रहेगी तब तक अहम स्थिति में सुरंग होता ही रहेगा। अब मुझे ऐसा अनुष्ठान करना है, अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे इतना जप करना है, अब मुझे ऐसा तप करना है, अब मुझे इतना अध्ययन करना है, अब मुझे इस चिंतन में लगना है। अशुभ करने को तो छोड़ दो, उनके लिए तो अपने जीवन में कोई स्थान नहीं है। जो साधन के रूप में कर्म और चिंतन के अच्छे अच्छे तत्व है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि उनको भी करने का संकल्प जब तक रहेगा तब तक ये शुद्ध होने पर भी अहम रहेगा। कुछ करना है तो करना शरीरों की सहायता से ही संभव होता है और शरीरों का तादात्म्य छोड़ने पर ही शक्ति की अभिव्यक्ति अनुभव में आती है। तो कुछ न कुछ करने की बात रहेगी तो शरीरों से लगाव रहेगा और उधर की ओर लगाव रहेगा तो उधर की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए सब कुछ करने के बाद कुछ न करने वाली साधना हर प्रकार के साधकों के लिए अनिवार्य है। अब विश्वास पथ की दृष्टि से बहुत सहज होता है। क्या होता है कि हम लोग भगवत विश्वासी होने के नाते उनके आश्रित होकर रहना पसंद करते हैं, उनकी शरणागति ही अपना संबल है। तो उनको ऐसी सलाह दी गई, अनुभवी संत ने ऐसी सलाह दी कि बिना देखे बिना जाने एक बार उनकी सत्ता को स्वीकार करके उनसे अपनी आत्मीयता मान लो, आत्मीयता स्वीकार कर लो। हे प्रभु मैं तेरा, हे प्रभु तू मेरा, जिसकी जैसी रुचि हो, जिसमें जितना साहस हो, हे प्रभु तू मेरा, यह भी मनुष्य ही कहता है। ये कितनी बहादुरी है आपकी देखिए, पल पल में तिल-तिल में गलने वाला मिटने वाला शरीर लेकर हम धरती पर चलते फिरते हैं, नाशवान शरीर को लेकर नाशवान जगत में रहते हुए कितनी बहादुरी है आपकी कि आप कहते हैं कि हे प्रभु तू मेरा, तो मुझे सचिन के लिए उस असीम से संबंध मानना सहज है, स्वाभाविक है। कितनी बहादुरी है आपकी। इस स्थूल दृष्टि से जगत को देखते हुए उस अलख अगोचर को हम अपना बना लेते हैं, मान लेते हैं। तो मनुष्य की इस स्वीकृति में बड़ा बल है। जब नाकवान से नाता जोड़ो तो उसका परिणाम तुम्हारे सामने आ जाता है। तो अविनाशी से जो सदा सदा का नाता है उसको अगर जीवन में प्रधानता हम देंगे तो उसका प्रभाव अपने में नहीं आएगा। अरे भाई मरने जीने वाले संबंधियों से अपना संबंध मान लेते हो तो उनका संयोग वियोग तुम्हारे सिर पर चढ़ जाता है। तो कभी न बिछड़ने वाले को अपना मानोगे तो उसका अनंत अखंड आनंद तुम्हारे पास नहीं आएगा, आएगा। तो इतनी सी तो बात है इसीलिए नीरज जी ने कहा, ऐसे वर को क्या वरू रे जो जन में मर जाए, वर वरिये एक सांवरिया रे सुरलो अमर हो जाए। इतनी बहादुर है, देखो तो यह पुरुषार्थ हम भाई बहनों को करना पड़ता है। बड़ा अच्छा होता है उसका परिणाम। क्या अच्छा होता है कि प्रातः काल होकर जगते ही सबसे पहला प्रोग्राम व्यक्तिगत सत्संग है, और उस व्यक्तिगत सत्संग में अपने उस जीवनाधार को, अपने उस सर्वेश्वर को, अपने उस परम चिंतन को याद करते हैं और उनकी कृपा का आश्रय लेकर उनकी शरण में अपने को डाल दो और शांत रहो। स्वयं को कुछ करना नहीं है और अपने को कुछ चाहिए नहीं, तो जगत से कुछ चाहिए नहीं और जगत पति से मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो जानते नहीं है क्या मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? इस बात का पता उनको है कि नहीं है? और बहुत सी बातों को हमारे बिना मांगे उन्होंने दे दिया कि नहीं दे दिया? तो अब जो सबसे जरूरी बात है कि उनकी प्रीति मुझ में उदित हो जाए, तो इसको भी कहना पड़ेगा।